بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والوں، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज रविवार है, आज़र की 9, रबीउल सानी की 13 और नवंबर की 29 तारीख। सदा की भांति पहले आप समाचार सुनेंगे, उसके बाद अनमोल बातें पेश होंगी, जिसके बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम और फिर आप सुनेंगे मन को शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार और सभा का अंतिम प्रोग्राम है आजकल। इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा रोजा नमाज ही उपासना नहीं है, बल्कि सृष्टि के बारे में चिंतन भी उपासना है। हजरत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईश्वरीय अनुकंपाओं का कम से कम आभार ये है कि उससे ईश्वर की अवज्ञा ना करो, यानी ईश्वरीय अनुकंपाओं को ईश्वर की अवज्ञा में इस्तेमाल न करो। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035-06-5492। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib। और अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरी की हत्या की निंदा दुनिया भर में हो रही है। इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कश्मीर विवाद और इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। अफगानिस्तान में 2 बम धमाकों में कम से कम 34 लोग मारे गए, मारे जाने वालों में ज्यादातर फौजी हैं। और अब आप मोहम्मद अली कुम्मी से विस्तार से समाचार सुनिए। विश्व के अनेक नेताओं ने टेलीफोन करके विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ से बात की है और ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की आतंकी कार्रवाई में हत्या की निंदा की है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिगदाद ने अपनी ईरानी समकक्ष को टेलीफोन करके ईरान के प्रतिरक्षा व परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की निंदा की है और ईरानी राष्ट्र के साथ संवेदना जताई। फिलिस्तीन के हमास आंदोलन के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख इस्माइल हनिया ने भी जवाद जरीफ से टेलीफोनी संपर्क में ईरानी राष्ट्र व सरकार से संवेदना प्रकट की और परमाणु वैज्ञानिक शहीद फखरीजादे की हत्या की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्री ने भी अपनी ईरानी समकक्ष को टेलीफोन करके इस आतंकी कृत्य की निंदा की है। तुर्की के संसद सभापति ने भी ईरान के परमाणु व प्रतिरक्षा वैज्ञानिक की हत्या की निंदा करते हुए इसे एक आतंकवादी कृत्य बताया। वेनेजुएला व दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भी शहीद फखरीजादे की हत्या की निंदा की। यूरोपीय संघ ने भी इसे एक आपराधिक कृत्य और मानवाधिकार के सम्मान के सिद्धांत के खिलाफ बताया। कई देशों व अमरीकी संचार माध्यमों ने शहीद फखरीजादे की हत्या में इसराइल के लिप्त होने को निश्चित बताया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि एक बड़े शर्म की बात है कि कुछ लोग आतंकवाद के मुकाबले में भी खड़े नहीं होते। मोहम्मद जवाद जरीफ ने एक ट्वीट करके कहा कि निश्चित रूप से ईरान के परमाणु वैज्ञानिक के खिलाफ आतंकी हमले की योजना एक आतंकी सरकार ने तैयार की, जिसे उसके अपराधी पिट्ठुओं ने अंजाम दिया। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह बड़े शर्म की बात है कि कुछ लोग आतंकवाद के मुकाबले में भी खड़े नहीं होते और अपने आप को संयम के निमंत्रण के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। ईरान के सांसदों ने रविवार को बंद दरवाजों के पीछे संसद की बैठक में देश के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक शहीद फखरीजादे की हत्या के विभिन्न आयामों की समीक्षा की और इस हत्या का जवाब देने के विकल्पों के बारे में चर्चा की। सांसदों ने इस बैठक में जवाबी कार्रवाई और उचित प्रतिक्रिया के लिए कुछ फैसले किए हैं। आईआरजीसी की कुछ ब्रिगेड के कमांडर ने कहा कि मोहसिन फखरीजादे की शहादत ने मानवाधिकार, प्रजातंत्र और आजादी के झूठे समर्थकों को अपमानित कर दिया है। जनरल इस्माइल खान ने ईरान के वैज्ञानिक व रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद अपने एक संदेश में कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों ने शहीद फखरीजादे के खून का बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि ईरान के बहादुर सपूतों के गौरवपूर्ण अनुभव ने यह सिद्ध किया कि एक बार फिर सिद्ध करेगा कि महान लोगों की हत्या न केवल ये कि उनकी प्रगति और विकास में रुकावट नहीं बनेगी, बल्कि युवा व वीर वैज्ञानिकों के हौसले से ये सफर और ज्यादा तेजी से तय होगा और प्रिय शहीदों ने जो झंडा फहराया है वो कभी भी जमीन पर नहीं गिरेगा। ईरान के रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क विभाग के उप प्रमुख ने बताया कि ईरान के परमाणु और प्रतिरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर फखरीजादे को सोमवार को दफन किया जाएगा। ईरान में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 12,000 से ज्यादा नए केस सामने हैं, जबकि इस दौरान 389 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता सीमा सादात लारी ने रविवार को देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की कुल तादाद का जिक्र करते हुए कहा कि डायग्नोस के स्पष्ट मानदंड के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 12,950 नए केस सामने आए, जिनमें 1,795 लोग भर्ती हुए और बाकी लोगों को ओपीडी पेशेंट के तौर पर जरूरी सेवा दी गई। उन्होंने बताया कि ईरान में अब कोविड 19 की चपेट में आने वालों की तादाद 9,48,749 हो गई है, जबकि 6,58,292 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुकी हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस कोविड 19 से 389 लोगों की मौत हुई। गौरतलब है कि अमेरिका, भारत, ब्राजील, रूस और फ्रांस में क्रमशः कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस हैं। इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कश्मीर विवाद और इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास हुए। ये प्रस्ताव एकमत से पास हुए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से जारी बयान के मुताबिक नाइजर की राजधानी नियामे में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की 47वीं बैठक में कश्मीर विवाद का पूरी दृढ़ता के साथ समर्थन करने पर बल दिया गया और इस बारे में एक प्रस्ताव पूरी सहमति से पास हुआ। ओआईसी ने भारत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को एक पक्षी व गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया और प्रस्ताव के जरिए भारत से मांग की कि वह गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्द करे और दूसरी गैर कानूनी कार्रवाइयां रोके। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में आया है कि ओआईसी के 57 देशों ने आरएसएस और बीजेपी सरकार की नीतियों को रद्द करते हुए भारत से मांग की कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे कश्मीर में आबादी का रेशियो बदले। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल रखा है। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसान एक तरफ जहां दिल्ली की सिंघू और टिकरी सीमा पर डटे हुए, वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों की तादाद में किसान जुट गए हैं। उधर हरियाणा के किसानों ने भी कई जगह सड़कों पर जाम किया और दिल्ली सीमा के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमा आंदोलनकारी किसानों से भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन खत्म करके सरकार से बातचीत की अपील की, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि वे किसी भी शर्त वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। किसानों की मांग है कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सली छापामारों के हमले में एक सुरक्षा अधिकारी हताहत और 9 जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तलाशी अभियान पर निकले भारत के कुछ सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलियों ने आईईडी से हमला किया। अफगानिस्तान में 2 बम धमाकों में कम से कम 34 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में ज्यादातर फौजी हैं। ये दोनों आत्मघाती धमाके थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सूत्र के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक एक हमलावर रविवार को गजनी प्रांत के पूर्वी भाग में सेना की कमांडो इकाई की छावनी में विस्फोटक पदार्थ से लदी एक गाड़ी लेकर घुस गया और उसे धमाके से उड़ा दिया। इस हमले में 31 फौजी मारे गए और 24 अन्य घायल हुए। उधर दक्षिणी अफगानिस्तान के जाबुल में रविवार की सुबह एक आत्मघाती ने प्रांतीय परिषद के प्रमुख अताजान हकबयात के कारवां को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 12 लोग घायल हुए। घायलों में बच्चे भी हैं। یمن کے معاملوں میں سنیکت راشٹر کے وشیش دوت نے کہا کہ اگر یمنی پکش اگلے ہفتوں میں ایک میز پر بیٹھ گئے تو انہیں وشواس ہے کہ یدھ ویرام پر سہمتی بن جائے گی۔ مارٹن گریفس نے کہا کہ اگر وہ یمن میں سنگھرشرت پکشوں کو اگلے ہفتوں کے دوران ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں پورا یقین ہے کہ وہ سنگھرش ویرام کے سمبندھ میں سہمتی پر پہنچ جائیں گے اور یمن شانتی کی اور بڑھ جائے گا۔ انہوں نے بل دے کر کہا کہ اب یمن یدھ کے ختم ہونے کا سمے آ گیا ہے۔ یمن کے معاملوں میں سنیکت راشٹر کے وشیش دوت نے کہا کہ اس سمے جو سمسیا ہے وہ یہ ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے کارن بات چیت دور سے ہو رہی ہے اور مجبوراً پہلے ایک پکش سے وارتا ہوگی اور پھر سمادھان نکلنے کے بعد یہ وشے دوسرے پکش کو بتایا جائے گا۔ کچھ سمے پہلے یمن کی راشٹری مکتی سرکار کے ودیش منتری ہشام شرف نے یمن کے معاملوں میں سنیکت راشٹر کے وشیش دوت مارٹن گریفس کو ایک خط بھیج کر کہا تھا کہ سعودی گٹھ جوڑ کے حملوں کے کارن یمنی راشٹر کو اتینت بھیانک مانویہ تراسدی کا سامنا ہے اور اس استھتی کو ختم کرنے کے لیے ترنت قدم اٹھائے جانے چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ انمول باتیں۔ دوستو، کارکرم انمول باتیں میں آپ کا سواگت ہے۔ روش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کارکرم میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن بہت ہیں اور وہ ایک دوسرے کی سہایتا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے دیش کے خلاف بہت سے دیشوں کی خفیہ ایجنسیاں ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ کر رہی ہیں۔ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسلام کے آرمبک کال میں جنگ احزاب یا جنگ خندق کی اور سنکیت کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس بات کا الیکھ ضروری سمجھتے ہیں کہ جنگ خندق کیا تھی۔ جنگ خندق میں مدینہ اور اس کے آس پاس کے سمست قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے اور ایک ساتھ مل کر وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور سارے قبیلے یہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑائی میں پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا انت کر دیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دھرم سے مکتی مل جائے گی۔ روچک بات یہ ہے کہ اس جنگ میں مدینہ کے پاس رہنے والے یہودی بھی کافروں اور انہکیشور وادیوں کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں نے دشمنوں کو گروہ گروہ میں دیکھا تو کہا کہ یہ وہی ہیں کہ جس کی سوچنا اللہ اور اس کے پیغمبر نے دی تھی۔ جب مسلمانوں نے اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کے ایمان میں وردھی ہو گئی۔ دشمنوں نے لگ بھگ چاروں اور سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا اور دشمنوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے خندق یعنی کھائی بھی کھود رکھی تھی، پرنتو کافروں میں سے ایک عرب جگت کا جانا مانا یودھا عمر ابن عبدوت خندق کو پھاند کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ اگر کافر کو مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے اور اگر مار دیے گئے تو شہید، اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو تم میں سے کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ میں اسے ابھی جنت بھیجتا ہوں۔ اس کی اس للکار پر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو بیٹھا دیا اور پھر اس نے اپنی پہلی بات دہرائی اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی جنت نہیں جانا چاہتا؟ یہاں تک کہ اس نے یہ بات تین بار کہی اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی عمر ابن عبدوت سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب نے عمر ابن عبدوت کی بہادری سن رکھی تھی اور سب کو گیات تھا کہ اس کے مقابلے میں جانے کا مطلب موت کے منہ میں جانا ہے۔ انت میں پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے لیے پرارتھنا کی اور کہا کہ ہے ایشور، علی کو وجئی بنا، اور اگر وہ وجئی نہ ہوئے تو تیرے دھرم کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی جب حضرت علی علیہ السلام کو بھیج رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سمپورن ایمان سمپورن کفر کے مقابلے میں گیا ہے۔ دوستوں، کارکرم کے اس بھاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب عمر ابن عبدود مقابلے کے لیے للکار رہا تھا تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو کیوں روک رکھا تھا؟ کیا انہیں پہلی ہی بار میں حضرت علی علیہ السلام کو نہیں بھیج دینا چاہیے تھا؟ اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اگر پہلی ہی بار میں پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام کو بھیج دیتے تو بعد میں بہت سے مسلمان یہ کہتے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں اپنی بہادری کا رن کوشل دکھانے کا موقع ہی نہیں دیا، ورنہ ہم عمر ابن عبدود کے مقابلے میں چلے جاتے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو روک کر آنے والی پیڑھیوں کو جواب دے دیا، اور ان کے اس عمل سے سمست مسلمانوں کی بہادری کی واستوکتا بھی سامنے آ گئی۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام کافروں کی سینا کے سب سے بڑے اور مشہور بہادر کے مقابلے میں پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے پرتسپردی کی تین باتوں میں سے ایک بات قبول کرتا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ہاں، کہو کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میری پہلی بات یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میری دوسری بات یہ ہے کہ تو واپس چلا جا۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر میں واپس جاؤں گا تو سب عورتیں مجھ پر ہنسیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میری تیسری بات یہ ہے کہ میں پیدل ہوں، تو بھی مجھ سے پیدل لڑ۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے کود کر نیچے آ گیا اور اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے اور حضرت علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ان کے سامنے آ گیا۔ بہرحال دونوں یودھاؤں میں کافی دیر تک بہت گھماسان یدھ ہوا۔ انت میں حضرت علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کا سر قلم کر دیا۔ یہ درش دیکھنا تھا کہ سارے دشمن رن شیتر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پیغمبر اسلام نے جنگ خندق کے دن کہا تھا کہ خندق کے دن علی کا ایک وار لوک پر لوک کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوستوں، آج کے کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہمیں انمتی دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستوں، میں ہوں رویش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایران کے مہان ویگیانک شہید ڈاکٹر محسن فخری زادے کی شو یاترا کے بارے میں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
با ریختن خون عزیز ما تایید شد انقلاب ما۔
اور پھر چرچا کریں گے ایران کی نیائے پالیکا کے مانوادھیکار آیوگ کے سچیو کے بیان پر۔
من ارزیابیم این هست که این جنایت در امتداد سیاست فشار حد اکثری۔
اور پھر چلیں گے بھارت، جہاں ہمارے سمواددات آپ کو کشمیر میں ہوئے ضلع وکاس پریشد کے چناؤ کے بارے میں وستار سے بتائیں گے۔
کہ جموں کشمیر میں 70 سالوں کے بعد ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل یعنی ضلع پنچایت کے چناؤ ہو رہے ہیں۔
तो आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईरान के महान वैज्ञानिक शहीद मोहसिन फखरी जादे के बारे में। इस समय पूरा ईरान शहीद फखरी जादे के गम में डूबा हुआ है। पवित्र नगर मशहद में इमाम रजा अलैहि सलाम के रोजे में अंतिम सलाम को पहुंचा शहीद का शव। इस संबंध में विस्तार से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कमर अब्बास।
ईरान के महान वैज्ञानिक शहीद डॉक्टर मोहसिन फखरी जादे की शहादत के बाद ईरान के विभिन्न इलाकों में उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। एक ओर ईरानी राष्ट्र अपने महान वैज्ञानिक को अंतिम सलाम दे रहा है तो दूसरी ओर पवित्र मशहद नगर में स्थित पैगंबर इस्लाम के पौत्र इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पर शहीद फखरी जादे के शव को अंतिम सलाम के लिए ले जाया गया। जब शहीद मोहसिन फखरी जादे के शव पवित्र नगर मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से अपने महान वैज्ञानिक का स्वागत किया। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आम लोगों को खबर नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता गया कि उनके शहीद का शव इमाम के रोजे में आया है, लोगों ने रोजे की ओर दौड़ लगा दी।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
इसके लिए जल्द ही शव को रोजे से बाहर ले जाया गया।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
बारिश्तान खून अजीज मा तायीद शुद इनकलाब मा बखुशीद मारा मिल्लत मा बीदारतर मी शवद।
इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि हमारे शहीदों का खून हमारी क्रांति की सफलता पर मुहर है। जितना हमें मारोगे उतना ही हमारा राष्ट्र और ज्यादा जागरूक होगा। हम मौत से नहीं डरते हैं और तुमको भी हमारी हत्या करने से कोई हिचकिचाहट नहीं है। इस बीच आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि कोरोना वायरस के कारण चिकित्सा प्रोटोकॉल को देखते हुए शहीद डॉक्टर फखरी जादे के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम बहुत ही सीमित पैमाने पर आयोजित किया जाएगा और केवल कुछ अधिकारी और शहीद के परिवार के सदस्य ही भाग लेंगे। शहीद महान वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरी जादे का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। इससे पहले रविवार को शहीद फखरी जादे के शव को पवित्र नगर मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के दर्शन के लिए ले जाया गया और फिर वहां से पवित्र नगर कुम में हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। प्रतिरक्षा उद्योग के इस निष्ठावान शहीद के शव को दफन से पहले तेहरान के बहिश्ते जहरा कब्रिस्तान में स्थित इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह के मजार पर भी ले जाया जाएगा।
और अब बात करते हैं ईरान की न्यायपालिका के मानवाधिकार आयोग के सचिव ने कहा है कि ईरान पर अधिक दबाव की नीति के दो पहलू हैं, एक प्रतिबंध और दूसरे हत्या। इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
मन अर्ज़ियाबी मीन हस के इन जिनायत दर इम्तिदाद सियासत फिशार हद अक्सरी ट्रंप हस।
न्यायपालिका के मानवाधिकार आयोग के सचिव ने कहा है कि हत्या और प्रतिबंध ईरानी राष्ट्र के खिलाफ ओबामा के दौर से आरंभ हुए अधिक दबाव की नीति का ही हिस्सा है। समाचार एजेंसी ईरान प्रेस को न्यायपालिका के मानवाधिकार आयोग के सचिव अली बाकरी कनी ने शनिवार को दिए अपने इंटरव्यू में ईरान के महान वैज्ञानिक शहीद डॉक्टर मोहसिन फखरी जादे की शहादत की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि फखरी जादे की हत्या ट्रंप की अधिक दबाव की नीति का ही हिस्सा है। ये वो नीति है जिसे ओबामा ने ईरानी राष्ट्र के खिलाफ शुरू किया था। न्यायपालिका के मानवाधिकार आयोग के सचिव ने कहा कि इस नीति के दो पहलू हैं। पहला प्रतिबंध है जो ओबामा के दौर में आरंभ हुआ था, जिसके जरिए समय समय पर ईरानी जनता की बुनियादी जरूरतों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ट्रंप के कार्यकाल में यही प्रतिबंध और अधिक हो गए, यहां तक कि अमरीकी अधिकारियों ने इसका दायरा चिकित्सा उपकरणों और दवाओं तक फैला दिया। अली बाकरी कनी ने आगे कहा कि दूसरा पहलू हत्या की नीति है। ये काम भी ओबामा के समय में ही शुरू हो चुका था, नए दौर से इसका कोई संबंध नहीं है। ओबामा के कार्यकाल में ईरानी राष्ट्र ने 5 वैज्ञानिकों को खोया था। ईरान की न्यायपालिका के मानवाधिकार आयोग के सचिव ने कहा कि शहीद मोहसिन फखरी जादे की हत्या अमेरिका की इन्हीं दो नीतियों का नतीजा है, जिसमें प्रतिबंध और हत्याएं दोनों शामिल हैं। इन दोनों नीतियों का उद्देश्य ईरानी राष्ट्र की प्रगति को रोकना या उसको बाधित करना है। अली बाकरी कनी ने आगे कहा कि इस तरह के अपराध हमेशा राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाते हैं, ये लोगों को जागरूक करते हैं। राष्ट्रीय प्रगति के सभी क्षेत्रों को ईरान के दुश्मनों से खतरा है। उन्होंने कहा कि शहीद होने वाले परमाणु वैज्ञानिक वे हैं जिन्होंने इस्लामी गणतंत्र ईरान को विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं में प्रवेश दिलवाया है। इन शहीदों का उद्देश्य ईरानी राष्ट्र के कल्याण को सुनिश्चित करने के अलावा और कुछ नहीं रहा। अली बाकरी ने कहा कि शहीद मोहसिन फखरी जादे की हत्या की विश्व समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। इस अपराध का जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने न्यायपालिका में मुकदमा चलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अली बाकरी कनी ने कहा कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने भी यह आदेश दिया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाकर कार्यवाही की जाए। अली बाकरी कनी ने कहा कि पश्चिमी देश इस तरह का व्यवहार करते हैं कि किसी भी अपने विरोधी की आवाज़ को वे उठने नहीं देते। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान कई बार ज़ायोनी शासन ने ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याएं की हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने किसी भी तरह की निंदा नहीं की।
और अब रुख करते हैं भारत का। अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद से कश्मीर में DDC पहला बड़ा चुनाव है। गुपकार गठबंधन और BJP दोनों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं ने कहा है कि अगरचे उनके अनुसार भाजपा समर्थक दलों और मौजूदा प्रशासन ने इस अलायंस को इलेक्शन से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया, परंतु हमने एकता के साथ उसे असफल बना दिया। पीपल्स अलायंस के दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर DDC इलेक्शन में भाग लिया और ये बात सिद्ध हो गई कि वो आज भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जब परिणाम सामने आएंगे तो भाजपा को पता चलेगा कि वो कहां पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके कहने पर मतदान में भाग लिया और हम उनके आभारी हैं। इस बीच भाजपा ने कहा है कि दफा 370 के कारण कश्मीर में तामीर तरक्की रुकी हुई थी और यही कारण था कि यहां पर जिला पंचायती चुनाव नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि 370 का अंत हुआ और अब जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि कश्मीर में तामीर तरक्की उनके अनुसार धारा 370 के होने के नाते रुकी हुई थी। अब जब मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे हटा दिया, अब जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि उसने घाटी की और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और उन्होंने देखा कि वहां के लोग उनके अनुसार लोकतंत्र के साथ हैं और वो भारत के हर प्रयास और हर निर्णय का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों में जुनून और जज्बा देखा। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा
कि जम्मू कश्मीर में 70 सालों के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश ने जिला पंचायत के चुनाव बहुत देखे, सभी जगहों पर देखे, लेकिन 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते थे। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस जमीन से नहीं होगा, जब तक जिला पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, वहां तक पॉलिटिकल जो प्रक्रिया है वहां तक नहीं होगी, तब तक जो है वो राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधूरी रहती है। और ये काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। और जो खुशी की बात है, सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस में लोग पूरे जुनून और जज्बे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एक एक हिस्से के लोग, मैं तो खुद कंपेन करके लगातार कर रहा हूं, करके आया भी हूं, मैं देख रहा हूं कि जो जुनून और जज्बा है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, और जिस जुनून और जज्बे के साथ लोग जो है वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं, हम उनको नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग।
इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में एक अलगाववादी छापामार हताहत हुआ, जिसकी तुरंत पहचान नहीं हुई। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह इसरा की आयत नंबर 7 की तिलावत सुने।
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا।
यदि तुम कोई भलाई करोगे तो वो अपने लिए ही करोगे, और यदि कोई बुराई करोगे तो वो भी अपने लिए ही करोगे। तो जब दूसरा वचन पूरा होने को आएगा तो एक शक्तिशाली गुट आएगा जिसके लोग तुम्हारे चेहरों को बुरा बना देंगे और मस्जिदुल अक्सा में प्रविष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में ले लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि ईश्वर ने बनी इसराइल को सूचना दी थी कि वे दो बार धरती में बुराई फैलाएंगे और दोनों ही बार उनसे अधिक शक्तिशाली लोग आकर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लेंगे तथा उनके घर बार को ध्वस्त कर देंगे। ये आयत बनी इसराइल द्वारा दूसरी बार बुराई फैलाने के बाद के समय की ओर संकेत करते हुए कहती है, संसार में हर कार्य की प्रतिक्रिया और हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। यदि तुम भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भलाई भी की जाएगी, और यदि तुम बुराई करोगे तो इस बात की आशा मत रखो कि लोग तुम्हारे साथ भलाई करेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी बुराई का व्यवहार ही किया जाएगा।
आगे चलकर आयत कहती है कि एक बार तुमने धरती में बुराई फैलाई थी और उसका परिणाम भी देख लिया था, किंतु तुमने उससे पाठ नहीं सीखा और फिर बुराई करने लगे। अतः इस बार भी तुम्हें इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि तुम पर कुछ ऐसे लोग अपना वर्चस्व जमा लेंगे जो तुम्हें अत्यधिक अपमानित करेंगे। वे मस्जिदुल अक्सा को तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें अपने अधीन कर लेंगे।
कुरानी मजीद में इस घटना के समय और ब्यौरे का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं में जो बात महत्वपूर्ण होती है वो उनसे मिलने वाले पाठ हैं जिनसे सभी राष्ट्रों और जातियों को शिक्षा लेनी चाहिए, और ये जान लेना चाहिए कि साम्राज्य और कुफ्र निरुत्तर नहीं रहता और धरती में बुराई फैलाने का दंड इसी संसार में अवश्य ही मिल जाता है।
इस आयत से हमने सीखा कि हमारी अच्छाई और बुराई से ईश्वर को कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती, बल्कि इसका परिणाम स्वयं हमें प्राप्त होता है।
इतिहास तथा समाज के बारे में ईश्वर की परंपराएं तथा कानून स्थिर हैं, और जो कोई भी बुराई फैलाने का प्रयास करता है वो स्वयं तबाह हो जाता है।
आइए अब सूरह इसरा की आयत नंबर 8 की तिलावत सुने।
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
شاید تمہارا پالنہار تم پر دیا کرے اور یدی تم پلٹ آئے تو ہم بھی پلٹ آئیں گے اور ہم نے نرک کو کافروں کے لیے ایک کڑا کارواس بنایا ہے.
یہ آیت کہتی ہے کہ تمہیں کبھی بھی ایشور کی دیا کی اور سے نراش نہیں ہونا چاہیے بلکہ سدیو اس کی دیا و کرپا کی اور سے آشاوان رہنا چاہیے. البتہ اس سمبندھ میں تمہارا ویوہار اور کرم ایشوری دیا کی پراپتی کا مارگ پرشست کرتا ہے. یدی تم نے برائی کو چھوڑ دیا تو اس بات کی آشا ہے کہ ایشور تمہیں اپنی دیا کا پاتر بنائے. کنتو یدی تم نے برائی کو جاری رکھا تو جان لو کہ ایشوری دیا تمہاری اور سے پلٹ جائے گی اور اس سنسار میں تباہ ہونے کے اترکت تمہیں پرلے میں بھی نرک میں جانا ہوگا جہاں اتینت کڑا دنڈ تمہاری پرتیکشا کر رہا ہے.
اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ ایشور اپنے بندوں کے ساتھ دیا و پریم سے کام لیتا ہے کنتو بندے ہی پاپ اور برائی دوارا ایشوری دیا کا مارگ بند کر دیتے ہیں.
ایشوری دیا کی شبھ سوچنا دینے کے ساتھ ہی اس کے دنڈ کی اور سے بھی سچیت کرتے رہنا آوشک ہے تاکہ منشیہ کو برائی کے پرینام کا گیان رہے.
آئیے اب سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت سنیں.
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعترنا لهم عذابا اليما.
نشچت روپ سے یہ قرآن سب سے سدرڑھ راہ کی اور مارگ درشن کرتا ہے اور بھلے کرم کرنے والے ایمان والوں کو یہ شبھ سوچنا دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے. اور جو لوگ پرلے پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے اتینت پیڑا دائک دنڈ تیار کر رکھا ہے.
سورہ اسراء کی بنی اسرائیل سے سمبندھت آیتوں کے سماپت ہو جانے کے بعد ان آیتوں میں منشیہ کے مارگ درشن میں قرآن مجید کے استھان کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی مارگ درشن کی شیلی ایک اتین سدرن و استھر شیلی ہے جو سمے و استھان کے پریورتنوں سے پربھاوت نہیں ہوتی. اسپشٹ ہے کہ ایشوری وانی اور رچیتا کے کتھن کو اتنی سدرنتا پراپت ہے کہ کوئی بھی بات اسے ڈگمگا نہیں سکتی.
قرآن مجید کی آیتوں کے روپ میں منشیہ کے لیے پرستت کی جانے والی ایشوری شکشاؤں اور واستوکتاؤں کا سب سے مہتوپورن لکش کلیاں و پریپورنتا کی اور اس کا مارگ درشن ہے اور وہ اس سمبندھ میں پورنتا سمپورن ہیں. اس پرکار ایشور نے منشیہ کے مارگ درشن کے لیے کسی بھی وستو کی کمی نہیں چھوڑی ہے اور اس کی رچنا ارتھات منشیہ کو جس بات کی بھی آوشکتا تھی اسے اس نے اس کے حوالے کر دیا ہے.
البتہ سوبھاوک ہے کہ ان شکشاؤں اور واستوکتاؤں سے لابھ اٹھانے میں منشیہ کو سوتنتر چھوڑا گیا ہے. کچھ لوگ انہیں سویکار کر کے ان کے انوسار کام کرتے ہیں اور لوک پرلوک میں سفل ہو جاتے ہیں کنتو کچھ لوگ کفر ایوم دویش کے کارن انہیں سویکار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی آنترک اچھاؤں کا پالن کرتے ہیں. اسپشٹ سی بات ہے کہ دوسرے گٹ کے لوگ جنہوں نے رچیتا کے مارگ درشن سے منہ موڑ لیا ہے غلط راستے پر چل پڑتے ہیں اور انہیں لوک پرلوک میں اس کے کپرناموں اور دنڈ کو سہن کرنا پڑتا ہے.
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ قرآن مجید کا مارگ درشن سدرڑھ ترک پر آدھارت ہے اور اس میں اندھ وشواسوں اور کلپناؤں کا کوئی استھان نہیں ہے.
قرآن مجید ایک امر اور ویشوک کتاب ہے اور اس کی شکشائیں کسی جاتی سمودائے یا بھاشا سے وشیش نہیں ہیں.
ایشوری دیا کا ایک چنہ اس کی اور سے مانو جاتی کے مارگ درشن کے لیے کتاب کا بھیجا جانا ہے کنتو اس انت دیا سے لابھ اٹھانا سوئم منشیہ کی اچھا اور ارادے پر نربھر ہے جو ایمان اتھوا کفر کے مادھیم سے اپنے لیے سورگ یا نرک تیار کرتا ہے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے.
ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
آج کل
دوستوں، کاریکرم آج کل کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور حسن عباس کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کاریکرم میں ہم مہاماری کے بارے میں چرچا کریں گے۔
دوستو، دو ایسے وشے ہیں جن پر منوشیہ ابھی تک نینترن حاصل نہیں کر پایا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں سنکرامک بیماریاں یا مہاماری۔ آج کل ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سمے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کورونا کی روک تھام میں لوگوں کے ویوہار کی اہم بھومکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان ماسک پہننے، سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹائن جیسی باتوں کو اپنے جیون میں ویوہارک بنا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس امید کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کورونا سے سرکشت رہ پائیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کورونا کال میں لوگوں کے پاس ادھیان کے لیے اپیوکت سمے ہے جس میں وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔
حالانکہ یہ بھی ایک واستوکتا ہے کہ کورونا کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ادھک ورودھاباسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ معاملہ اتنا جٹل ہو چکا ہے جسے اچھی طرح سے سمجھ پانا اب لگ بھگ اسمبھو دکھائی دیتا ہے۔ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چنتا ایوم جٹلتا سے بھرے کورونا کے اس دور میں بھوشیہ کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ اتہاس میڈیا میں پیش کیے جانے والے آنکڑوں اور سماچاروں سے الگ ہٹ کر دیکھتا ہے، یا کیا اس بارے میں کتابوں، کلاکرتیوں تتھا کلاکاروں کے درشٹی کون ہماری باتوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ ایسے میں ہمیں پہلے اتہاس کو دیکھ کر یہ جاننا ہوگا کہ اس پرکار کی پرستھتیوں میں وگت میں مانو نے کیا کیا۔
مہاماری یا سنکرامک روگ کے پھیلاؤ کے بارے میں اکانومسٹ پتریکا میں لکھے لیکھ کے انوسار مانو جاتی اتی پراچین کال سے ہی مہاماریوں سے اوگت رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وشو میں پہلی مہاماری لگ بھگ 430 ورش عیسیٰ پورو گریس میں پھیلی تھی، جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ مارے گئے تھے۔ اس مہاماری نے ایتھنس کی کمر توڑ دی اور قانون ویوستھا کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ سن 1347 عیسوی میں یورپ میں بلیک پلیگ نامک مہاماری آئی تھی۔ بلیک پلیگ کے کارن یورپ کی آدھی یا ایک تہائی آبادی کال کے گال میں سما گئی تھی۔ اس سے نہ کیول یورپ بلکہ افریقہ اور ایشیا بھی پربھاوت ہوئے تھے۔ اس مہاماری میں مرنے والوں کی کل سنکھیا 7 کروڑ سے ادھک بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ اسی دور میں ساماجک ایوم آرتھک ویوستھا میں بڑے بدلاؤ کر کے پنر جاگرن کال کی بھومکا پرشست کی گئی تھی۔
دوستوں، مہاماری کے بارے میں لکھی گئی پستک پریویسٹم میں فلورنس نامک کتاب کے لیکھک جان ہینڈرسن کا ماننا ہے کہ یہ مہاماری پرتیکش روپ میں پنرجاگرن کال تک نہیں پہنچی تھی، کنتو یہ کچھ لوگوں کے بیچ دھن سمپتی کے اکٹھا ہونے، دھنوان لوگوں کے ادھک دھنوان ہونے، مزدوری کی اودھی ڈبل ہونے کا کارن بنی۔ اس کے نتیجے میں کلا کی آرتھک سہایتا کی جانے لگی۔ مہاماری کے ویاپک پھیلاؤ کو کلا کے وبھن روپوں وشیش کر پینٹنگز میں بہت سپشٹ روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہینڈرسن کے انوسار مہاماری نے اس بھاونوں کو جاگرت کیا جس سے وہ پریچت ہیں، اس راہ کی اور بڑھے۔ ठीक वैसे ही जैसे हम में से वे अधिकांश लोग जो क्वारंटाइन हैं, वे लोग अपना समय काटने के लिए पुरानी फिल्में देखने के लिए विवश हैं। इटली के कुछ चित्रकारों ने बहुत ही अभूतपूर्व ढंग से मानवीय भावनाओं को यथार्थवादी रूप में पेश किया है।
यही शैली आगे चलकर पुनर्जागरण का प्रतीक बन गई। उसी काल में ईसाई धर्मगुरु और चर्च के चिकित्सक संगीत के उपचारिक गुणों के समर्थन में बोलते दिखाई दिए। इस आधार पर धार्मिक गीतों को उन लोगों के लिए वैध माना गया जो महामारी के डर से भागकर पश्चाताप के इरादे से सड़कों पर निकल आए थे। हालांकि इस तरह के दृश्य को सन 2020 में भी देखा जा सकता है। इटली में कोरोना फैलने के बाद क्वारंटाइन के आरंभिक काल में बहुत से इटलीवासी अपने घरों की छतों की बालकनियों पर आकर म्यूजिक बजाते थे। ये लोग न जानते हुए भी एक प्रकार से 16वीं शताब्दी ईस्वी के अपने पूर्वजों की तरह काम कर रहे थे। पुनर्जागरण काल में महामारी और संगीत नामक किताब के अनुसार तत्कालीन पोप अर्थात वरिष्ठ ईसाई धर्मगुरु ने इटली के मिलान नगर में लोगों का आह्वान किया था कि वे अपने घरों में जाकर घरों की खिड़कियों से धार्मिक गीत गाएं ताकि सड़कों पर आ जाने वाले लोगों में वायरस फैलने से रोका जा सके।
इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि विगत में कला की अन्य शाखाएं भी महामारी या प्लेग के फैलने या उसके समाप्त होने के बाद विकसित हुई हैं। 19वीं शताब्दी में फैलने वाली महामारी पर पहला नियंत्रण अंतिम काल नामक उपन्यास के प्रकाशन के साथ हुआ। मैरी शैली द्वारा लिखे द लास्ट मैन नामक नॉवेल मानव के भविष्य का चित्रण करता है जो बहुत ही खतरनाक है। इसके अनुसार महामारी में एक व्यक्ति के अतिरिक्त मानव जाति का कोई भी सदस्य बाकी नहीं रहता। रिचमंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलिजाबेथ उत्का का मानना है कि स्पैनिश फ्लू के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को इस वायरस में लिप्त होकर बचने वालों में देखा जा सकता था। उत्का ने इस वायरस के बारे में कविता लिखी है जिसमें निराशा को दर्शाया गया है।
पहली महामारी के फैलने के शताब्दियों बाद भी आज ये महामारी न जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। महामारी में ग्रस्त होने, उसके उपचार से अज्ञानता, उसको रोकने में अक्षमता तथा महामारी के कारण दर्दनाक मौत के भय ने प्राचीन काल से पुनर्जागरण काल तक के कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ हमें ये बताने में सक्षम हैं कि पिछली शताब्दियों में प्लेग, हैजा या महामारी जैसी किसी महामारी के फैलने के समय लोगों की क्या स्थिति हुआ करती थी। उस काल की कलाकृतियों में इस दौरान के दुख की गाथा अधिक दिखाई देती है।
बहुत से कलाकार इस संदर्भ में दुनिया के अंत के विचार को अपनी पेंटिंग्स में चित्रित किया करते थे। उस समय मौत का विचार प्रबल हो चुका था। चर्च सहित धार्मिक स्थल हमेशा लोगों से भरे रहते थे। बहुत से लोगों ने ये मान लिया था कि अब दुनिया का अंत बहुत निकट है, अतः अब कुछ करना चाहिए। गिरजाघरों की दीवारों पर इंजिल से संबंधित कहानियों की विभिन्न रूप में कलाकृतियां दिखाई देती थीं। अब कला चर्च के नियंत्रण में आ चुकी थी जिसमें लोगों को दिखाया जाता था कि मौत एक पुल के समान है जो धरती के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है।
संसार के बहुत से लेखकों ने इस मुद्दे पर काफ़ी किताबें लिखी हैं कि किसी महामारी के फैलने के बाद लोगों के मन में उसका भय किस तरह से बैठ जाता है। इन लेखकों ने इस विषय को भी चित्रित किया है कि महामारी से मौत के डर के कारण मनुष्य की स्थिति क्या होती है। इन मुद्दों पर न केवल किताबें लिखी गईं और लेख प्रकाशित किए गए बल्कि इस पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। ये किताबें और फिल्में बताती हैं कि उस काल के लोगों की चर्चा का महत्वपूर्ण एवं मुख्य मुद्दा यही महामारी और उसका प्रभाव हुआ करता था। हालांकि समय गुजरने के साथ साथ महामारी, संक्रामक रोग, एपिडेमिक समाप्त हो जाता है, किंतु इससे संबंधित बातें विभिन्न रूपों में बाकी रह जाती हैं, जिनसे बाद वाली पीढ़ियां अवगत होती हैं। इन पीढ़ियों को ये बातें इतिहास की किताबों और कलाकारों की कलाकृतियों के माध्यम से पता चलती हैं।
एक पश्चिमी लेखक गैब्रियल ग्रेसिया महामारी के वर्ष नामक अपनी किताब में लिखते हैं कि संसार में विगत में लोगों ने कई महामारियों का सामना किया है। हालांकि बाद में उनको अलग अलग नामों से जाना गया, किंतु सबका परिणाम एक ही था, वो था व्यापक विनाश। इन महामारियों में ग्रस्त होने वालों में बहुत सौ ने इनसे बचने के लिए अपने हिसाब से संघर्ष भी किए, किंतु उनमें से अधिकांश को मौत को ही गले लगाना पड़ा जिससे वे बचने के प्रयास कर रहे थे। वर्तमान समय में भी हम COVID-19 या कोरोना वायरस के रूप में विगत जैसी ही महामारी का सामना कर रहे हैं जिससे इतिहास पहले से अवगत है। इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल में संसार की बहुत सी सभ्यताओं के अंत का कारण महामारियां ही रही हैं।
दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
श्रोताओ, आशा इस सभा के प्रोग्राम आपको पसंद आए होंगे। प्रोग्राम के बारे में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, जिसे आप हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, hindi@ws.irib.ir। इसी के साथ मोहम्मद अली कुम्मी और साथियों को इजाज़त दीजिए। शुभरात्रि, खुदा हाफिज़। Thank you.